अगली कहानी है ईंटों का जंगल। पत्र मेरे सामने रखा था, राम प्रकाश एंड कंपनी का नाम उस पर सुनहरे अक्षरों से छपा था। उस कागज के पुतले ने मेरे सारे सपनों को धराशाही कर दिया था। मेरा चहकना जैसे उड़नचू हो गया था, मेरी पत्नी तो जैसे बेहोशी होने वाली थी। कभी उसने भी राम प्रकाश एंड कंपनी के सुनहरे अक्षरों वाले जैसे सुनहरे सपने देखे थे? मुंबई जैसे महानगर में सपने ही तो मनुष्य को जीवित रखते हैं। धारावी, माहिम, कुर्ला और सारे उपनगरों की झोपड़पट्टियों में जी रहे लोग किसी सपने के सहारे ही तो अपना सारा जीवन बिता रहे हैं। इसी शहर में राम प्रकाश ने हमें भी एक सपना दिखा दिया था। सपने तो मैं दिल्ली में भी बहुत देखता था। वहां अपना घर है, घर, हां सचमुच का घर, मुंबई के कबूतर खानों से कहीं भिन्न। आंगन, सहन, बाग, 7 कमरे, 2 गुसलखाने, नौकरों के कमरे और हमारी प्यारी कुतिया लीजा का कमरा। इतना सब होते हुए भी मुझे मुंबई आने की क्या आवश्यकता थी? पिताजी का अच्छा खासा व्यवसाय है और मैं उनका इकलौता पुत्र। मेरे साथी भी तो मुझे ईर्ष्या करते थे। लाला धर्मराज का इकलौता वारिस, उनकी 3 मिलों का भावी मालिक। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था, फिर एकाएक क्या हो गया? क्यों मैं बगावत पर उतारू हो गया? कैसे इस माया नगरी में चला आया मैं? उस पत्र को देखकर मैं उछल पड़ा था। एयरलाइन में मुझे नौकरी मिल गई थी, फ्लाइट परसर की। पत्र तो ये भी आया था नीले कागज पर सुनहरे अक्षर लिए, किंतु काले रंग के टाइप किए शब्दों ने नीले और सुनहरे रंग को जहरीला बना दिया था। रोहिणी सुबक रही थी, मैं कभी उसे ढाढ़स बनाता और कभी स्वयं को संयत करने की कोशिश करता। एक ठंडा काला सन्नाटा घर में छा गया था। प्यार, हां यही तो किया मैंने। मैं रोहिणी को प्यार करने लगा तो ऐसा क्या गुनाह हो गया था? पिताजी तो गरीब घर से ही बहू लाना चाहते थे ना, उन्हें तो दहेज से कोई लगाव नहीं था, किंतु जात बिरादरी के मामले में कट्टरपन उनमें जैसे कूट कूट कर भरा था। लव मैरिज के नाम से ही उन्हें चिढ़ थी। बड़ों का अस्तित्व उन्हें हिलता दिखने लगता था। नाराज तो रोहिणी के परिवार वाले भी हुए थे। हम दोनों अकेले पड़ गए थे। अकेले, अकेले तो हम आज भी हैं। मेरे पिता कोई फिल्मी पिता नहीं जो कुछ दिनों के बाद हमें अपने सीने से लगा लेते। उनके उसूल तो संभवतः भगवान भी ना बदल पाए। हां, ससुराल वालों ने अवश्य हमारे प्यार को समझने की कोशिश की। कुछ समय बाद उन्होंने हमें माफ भी कर दिया। इस सुरसा नगरी में हम दोनों 3 होने की प्रतीक्षा में हैं। 3 महीने में रोहिणी मां बनने वाली है। मेरी मां तो पिताजी के हुक्म के बिना सांस भी नहीं ले सकती। रोहिणी की मां अब हमसे नाराज तो नहीं है, पर इतनी प्रसन्न भी नहीं है कि प्रसव करवाने के लिए हमारी सहायता करने मुंबई आ जाए। ऊपर से ये पत्र, अब तो हमें काणे साहब भी टका सा जवाब दे चुके हैं। इस फ्लैट को भी 2 महीने में खाली करना है। जीवन एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह बनकर रह गया है। प्रश्न, जब हम दोनों मुंबई पहुंचे तो भी यही प्रश्न हमारे सामने मुंह बाहे खड़ा था कि कहां रहें। करोड़पति बाप का इकलौता बेटा पहली बार अकेला अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। पहले दिन जिस होटल में भी रहने के बारे में सोचा, वही अपनी जेब से ऊंचा दिखाई दिया। जैसे तैसे करके कांदीवली में एक होटल 50 रुपए रोज पर तय हुआ। सारा शहर ऊंची ऊंची इमारतों से घिरा पड़ा है, ईंटों का जंगल। उन माचिस नुमा बिल्डिंगों में मैं भी अपने लिए एक घोंसला तलाश रहा था। रोज दफ्तर के बाद दलालों के आगे घिघियाता सा पहुंच जाता। सबके सब साले मक्कार थे। 15-20 हजार डिपॉजिट और 600-800 रुपए किराया, इससे नीचे तो कोई बात ही नहीं करता था। और यह हाल था उपनगर का। शहर में तो कोई किराए पर फ्लैट देने की बात ही नहीं करता। जयकर ने ग्रांट रोड और कोलीवाड़ा की बात कही थी। कोलीवाड़ा के नाम से एक सरकारी कॉलोनी का जिक्र भी आया। मन में एक नई आशा जाग उठी। बहुत सुंदर सा नाम बताया था उसने, एंड टॉप हिल। सुनकर लगा जैसे मालाबार हिल या पाली हिल के समान कोई सुंदर सी जगह होगी। पहली बार जब वहां गया तो सच्चाई की कड़वाहट ने थू थू करवा दी। बांद्रा हाईवे पार करते ही एक सड़ांध दिमाग में घुसने लगी और फिर आया धारावी। गंदगी की पराकाष्ठा। शाम का समय था। कोलीवाड़ा की वेश्याएं अपना बाजार सजाए सड़कों पर घूम रही थी। मन में एक अजीब सी धारणा घर करती जा रही थी। आखिर एंटॉप हिल आ ही पहुंचा। सेक्टरों में बटी हुई सरकारी कॉलोनी चारों ओर से झोपड़ पट्टियों से घिरी। एक ओर से चेंबूर के कारखाने से आती धुएं की लकीरें तथा रसायनों की गंध और दूसरी ओर जरायम पेशा लोगों का डर। हां, वहां कच्ची शराब बनाने वालों की झोपड़ियां भी थी। वहां भी फ्लैट मिलना क्या आसान था? हर दूसरे घर में दलाल फ्लैट की शर्तें सुनकर बहुत घबराहट होती। 11 महीने का किराया इकट्ठा लेने का रिवाज है यहां। 2 या 3 महीने का किराया दलाली के रूप में भी देना पड़ता है। हमारा दलाल छोटे लाल भी तो कम घाघ नहीं था। बात करते हुए खीसे बहुत निपोड़ता था। बहुत चक्कर लगवाए उसने भी। चक्कर लगाने के सिवा मैं कर भी क्या सकता था। फिर जैसे भगवान ने हमारी सुन ली, छोटे लाल ने हमें 4th मंजिल पर एक कबूतर खाना दिलवा ही दिया।
देखो सेठ, 4th माला का अपना फायदा है। एक तो चोरी चकारी का डर नहीं, पानी की टंकी भी ठीक ऊपर है और फिर मेहमान भी कम आएंगे। अरे कौन चढ़ेगा 4-4 माला?
हमें तो रोज चढ़नी थी वे 4 मंजिलें, किंतु फिर भी छोटे लाल हमारे लिए जैसे भगवान का अवतार था। उसने हमें कांदीवली के बदबूदार कमरे से उठाकर 4th मंजिल की फर्राटेदार हवा में ला बिठाया था। जीवन कुछ चलने लगा था। रोहिणी को अब मेरे पीछे अकेले रहने में उतनी परेशानी नहीं होती थी। मेरी नौकरी भी तो अजीब सी है। सारा समय घर में बिताना है या फिर भारत से बाहर ही रहना होता है। कई बार तो मेरा टूर 10-12 दिन का भी हो जाता है, परंतु रोहिणी के चेहरे पर पीड़ा की एक लकीर सी खिंच जाती। अकेलेपन से कहीं अधिक उसका एहसास हमें झकझोर देता था। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं था जिसका वास्ता देकर किसी को हम अपने यहां बुला लेते। बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वो बिना बुलाए ही आ धमके। सारी कॉलोनी में शोर मचा हुआ था। चैकिंग हो रही है, चैकिंग! ये क्या होती है? और तभी छोटे लाल भी हाफता हुआ आ ही पहुंचा। नरेंद्र जी, जल्दी कीजिए, फ्लैट को ताला लगाकर कहीं बाहर निकल चलिए। आज चेकिंग हो रही है। किसी ने कंप्लेंट कर दी है कि एलोटी लोगों ने फ्लैट किराए पर चढ़ा रखे हैं। जल्दी करो साहब, रात को वापस आ जाइएगा। हड़बड़ाहट में फ्लैट को ताला लगाया और किंग सर्कल स्टेशन की ओर चल दिए। समझ में नहीं आ रहा था कि जाए तो जाए कहां। रोहिणी भी बदहवासी हो रही थी। शाम तक निरुद्देश्य वीटी से गेटवे तक घूमते रहे। सब कुछ बहुत बेमानी सा लग रहा था। रात ढलने पर घर वापस पहुंचे। शोर शांत हो चुका था। न तो मुझे ही भूख थी और न ही रोहिणी खाना बनाने की स्थिति में थी। दोनों यूं ही पड़े रहे। पड़े रहने से तो कोई काम बनता नहीं। फिर से एक बार फ्लैट की तलाश शुरू कर दी। वैसे भी 11 महीने पूरे होने को थे। हमारे दलाल की खीसें फिर से निपुरने वाली थी। अब दोबारा इस चेकिंग का सामना करने की हिम्मत हमें नहीं थी। एक गुजराती महिला को हम पर दया आ गई। उसने अपना अंधेरी वाला फ्लैट हमें किराए पर देना स्वीकार कर लिया। उसने कहा, नरेन भाई, टेंशन काय को लेता? 10-15 दिन में जब भी तुम्हारा जी करे तब आ जा। उसे डिपॉजिट की भी कोई चाह नहीं थी, किंतु छोटे लाल को तो अपनी दलाली की चाह थी। अरे नरेन जी, 10 महीने हो चुके हैं, आप अगले 11 महीने का किराया भी दे ही डालिए। और आपके लिए एक स्पेशल छूट, अब की बार आपसे 2 महीने की दलाली नहीं लूंगा, सिर्फ 1 महीने से मेरा काम चल जाएगा। गुजराती महिला के आश्वासन ने मुझ में बहुत आत्मविश्वास जगा दिया था। मैं बोल ही तो पड़ा, दलाली किस बात की छोटे लाल? दलाली तो एक ही बार दी जाती है ना, जो हम दे चुके हैं। अब कोई दलाली वलाली नहीं दूंगा तुझे, समझा? छोटे लाल कुछ गड़बड़ा सा गया। ये भाषा और धमकी दोनों ही उसके लिए अप्रत्याशित थी, किंतु उसने हार मानना कहां सीखा था। ये तो और भी बढ़िया हुआ साहब जी, अब नया ग्राहक तो 2-3 महीने की दलाली देगा ही। चाबी लेने परसों हाजिर हो जाऊंगा। सामान ट्रक में लदवा रहा था। दिमाग उत्तेजना से भरा था। मनी मन छोटे लाल को लाखों गालियां दे चुका था और उस गुजराती महिला को दुआएं। अंधेरी पहुंचकर जीवन का सबसे काला अंधेरा देखा था मैंने। सामान ट्रक में लदा पड़ा था। मैं और रोहिणी उस गुजराती महिला के पास चाबी लेने पहुंचे तो उसने फ्लैट देने से साफ इंकार कर दिया। उसे कोई 20,000 डिपॉजिट वाला मिल गया था। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मन हुआ कि इस महिला का खून ही कर दूं। हमें सड़क पर ला खड़ा किया था उसने। आसमान में बादल गरज रहे थे। मुंबई की बरसात का कोई भरोसा है? उसी समय ट्रक छोटे लाल के घर की ओर मुड़वा दिया। छोटे लाल ने अभी गिलास में रम डाली ही थी, मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया उसने।
छोटे लाल जी, बहुत मुसीबत में फंस गया, आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं।
अरे नरेन जी, मुझ गिरे हुए इंसान के मुंह लगने आप कहां से आ गए? आप तो अंधेरी में रहने वाले थे ना? अरे एंटॉप हिल तो गुंडों का इलाका है भाई, गुंडों का।
छोटे लाल जी, मेरी बदतमीजी, मेरी गुस्ताखी को माफ कर दीजिए। हमें हमारा फ्लैट वापस दिला दीजिए। आप जितनी दलाली चाहें ले लें, इस समय तो हम सड़क पर खड़े हैं।
थोड़ा उपकार कर दीजिए छोटे लाल जी। संभवतः मेरी आंखों में घुटे हुए आंसुओं ने छोटे लाल पर थोड़ा असर किया था। वो 3 महीने की दलाली लेकर हमें फ्लैट देने को तैयार हो गया। जैसे सामान उतारा था वैसे ही चढ़ाने लगे। इस हादसे के बाद हम काफी हिल गए थे। एक दिन रात को सोते समय रोहिणी बहुत प्यार से बोली, सुनिए, जो थोड़ा बहुत गहना हमारे पास है उसे बेच देते हैं, एक छोटा सा घर खरीद लेते हैं। जब हाथ खुला होगा तो गहने फिर से बनवा लेंगे। मुझे एक झटका सा लगा। मेरी पत्नी इतनी दूर की सोच रही है और मैं अभी कौड़ियां मिलाने के चक्कर में ही हूं। यह सुनकर स्वयं को कुछ हीन सा अनुभव करने लगा था मैं। एक दिन ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर एक सूचना टंगी देखी। यूं लगा जैसे मैं इसी सूचना की प्रतीक्षा में था। जूहू में इतने सस्ते दामों में फ्लैट, वो भी सागर तट को छूता हुआ। पत्नी को भी विचार पसंद आया। गहने लेकर उसी सुनार के पास पहुंचा जहां से बनवाए थे। गहने खरीदते समय तो बनवाई भी ली थी उसने। अब बोला, सेठ 20% तो टाके में जाए गए, मरता क्या ना करता, वही ले लिया। और भी जहां तहां से पैसा इकट्ठा कर सकता था किया। पैसा लेकर चीफ प्रमोटर काणे साहब के पास अकाउंट डिपार्टमेंट की ओर चलता जा रहा था। मन में एयरलाइन की सोसाइटी का सपना लिए। एकदम से 40,000 रुपया कैश किसी अनजान व्यक्ति को देते डर सा लग रहा था। जी कड़ा करके काणे साहब को पैसे दे ही दिए, साथ में 20,000 रुपए का चेक। बाकी तो एयरलाइन से लोन लेना था। ब्लैक और व्हाइट का सिलसिला अब मुझे भी समझ में आने लगा था। क्या विडंबना है, सचमुच के नोट तो ब्लैक हैं और पेन से लिखा हुआ चेक व्हाइट है। काणे साहब कहे जा रहे थे, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, अगली दिवाली आप अपने घर में ही मनाइएगा। अब मैं जब भी फ्लाइट पर विदेश जाता तो पैसों को दांतों तले दबाकर खर्च करता। रहना तो 5-स्टार होटलों में था एयरलाइन के खर्चे पर, परंतु खाना वहां के ढाबों में ही खाता। हैमबर्गर, हॉट डॉग, फ्रैंकफर्टर या पिज्जा खाकर पेट भर लेता। रात को देर से 1 या 2 बजे सोता ताकि सुबह देर से ही उठूं और नाश्ते का समय निकल जाए। दोपहर और रात के खाने पर गुजारा करता। कभी कभी तो उसमें भी कोताही कर जाता। पैसे कुछ बचने लगे थे। हमारी बिल्डिंग की चिनाई पूरी हुई और पहला स्लैब पड़ गया। मन अपने स्वर्णिम भविष्य की पहली झलक देखकर झूम उठा। अब मैंने अपने ससुराल वालों पर भी रौब गांठना शुरू कर दिया। मुंबई में जुहू पर फ्लैट ले रहा हूं, वे भी अपनी बेटी के भाग्य को सराह रहे थे। 6 महीनों में 4 स्लैब पड़ गए। जब तब एंटॉप हिल से निकलता, कोलीवाड़ा और धारावी की गंदगी में से गुजरता हुआ जुहू जा पहुंचता। बिल्डिंग की बढ़ती हुई ऊंचाई जैसे मेरा जीवन ही बन गई थी। फिर सीमेंट का अकाल पड़ गया। डोनेशनों के चक्कर शुरू हो गए। हमारी बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़नी बंद हो गई। काम रुक गया। हमारी बिल्डिंग का भविष्य, हम 40 कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया। हम भागे भागे काणे साहब के पास पहुंचे। काणे साहब, आप हमारे चीफ प्रमोटर हैं, कुछ कहिए, 4 महीनों से काम बंद है।
अरे नरेंद्र बाबू, तुम घबराओ नहीं, بلڈنگ تو اس کا باپ بھی پوری کرے گا، اس کی چابی میرے ہاتھ میں ہے۔ کانے صاحب اپنی میز پر کپڑا پھیرتے ہوئے بولے، ان کی میز کے کانچ کے نیچے دبے سائیں بابا سمبھوتے ہماری مشکل سمجھ رہے تھے۔ 11 مہینے اور بیت گئے، چھوٹے لال کی کھیسے پھر ایک بار نپر آئی۔ بجھے من سے 11 مہینے کا کرایہ وہ اس کی دلالی ایک بار پھر اس کے حوالے کر دی۔ روہنی کا ماتا تھوڑا ٹھنکا، سنیے جی، یہ بلڈر مکان بنائے گا بھی کیا؟ روہنی روہنی تم گھبراؤ نہیں، دیکھو دیکھو سب ٹھیک ہو جائے گا۔
میں روہنی سے ادھک سوئم اپنے آپ کو آشوست کرتے ہوئے بولا۔
اور پھر آیا رام پرکاش اینڈ کمپنی کا یہ پتر۔ ہماری آشاؤں کی بلڈنگ اس پتر کا ایک جھٹکا بھی نہیں سہ پائی۔ ہمارے بلڈر نے لکھا تھا کہ گرہ نرمان کی وسوؤں کے مولیوں میں وردھی ہو گئی ہے، پرارتھنا ہے کہ 100 روپیہ پرتی فٹ کے حساب سے اور جمع کروائے، انیتھا وہ بلڈنگ پوری نہیں کر پائے گا۔
کانے صاحب کے گھر پہنچے تو وہ سائیں بابا کے کیرتن میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، آنکھوں میں ہی انہوں نے ہمارے آنے کا سبب جان لیا تھا۔
کانے صاحب، ہمارا پیسہ اتنے وش رکھ کر بلڈر نے یہ کیا پترا بھیجا ہے؟
دیکھو بھائی لوگ، ہم کیا کر سکتے ہیں،
اسے کورٹ میں گھسیٹ سکتے ہیں، اس کے ورودھ سماچار پتروں میں پرچار کر سکتے ہیں۔ آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے آپ کا پیسہ وہاں لگا ہی نہیں ہے۔ ہم اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے صاحب۔
کیسی بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ، کورٹ میں جانے کا مطلب ہے سالوں تک معاملہ لٹکا رہے گا، پھر کورٹ کے ذریعے تو آپ کا کیول وائٹ پیسہ ہی ملے گا، باقی 40,000 کیش کا کیا ہوگا؟
تو ہم کیا کریں کانے صاحب؟
میری بات مانیے، جھگڑے سے کچھ نہیں بنے گا، بلڈر کے ساتھ لڑائی لڑنا آسان نہیں ہے۔ آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے، کہیں وہ بھی کسی لفڑے میں نہ پھنس جائیں۔
اور اب میں یہ پیسہ لے کر بیٹھا ہوں چھوٹے لال کی پرتیکشا میں، 3 ورشوں میں یہ پیسہ کیسے کیسے سپنے دکھاتا رہا۔
فلیٹوں کے ریٹ اس بیچ آسمان کو چھونے لگے ہیں، رام پرکاش اینڈ کمپنی نے ہماری بلڈنگ 3 گنے داموں میں بیچ دی ہے۔ کانے صاحب کے گھر ایک نئی موٹر سائیکل، فریج، رنگین ٹیلی ویژن، میوزک سسٹم دکھائی دینے لگے ہیں، اور ان کے پاسپورٹ پر انکت ہے کہ وہ پچھلے 3 سالوں میں 2 بار نیو یارک کے چکر لگا آئے ہیں۔